ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸಬ್ಸೆ ಪೆಹಲೆ ಆಪ್ ಸಬ್ಕಾ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಫಿರ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂಂ. ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಸ್ವಾಗತ್. ಔರ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಬಧಾಯಿಯಾ ದೇನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂಂ. ಪ್ಯಾರೆ ಬಾಬಾ ಕಹತೆ ಹೈ ಕಿ ಸಂಗಮ ಯುಗ ಬಧಾಯಿಯೋ ಕಾ ಯುಗ ಹೈ, ಕುಚ ಔರ್ ನಹೀ ತೋ ಹಮ್ ಬಧಾಯಿಯಾ ಲೇತೆ ಔರ್ ದೇತೆ ಚಲೆ. ಕಿಸ್ ಬಾತ್ ಕಿ ಬಧಾಯಿ? ಬಧಾಯಿ ಬಧಾಯಿ ಹೈ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಿಲನ್ ಕಿ ಬಧಾಯಿ, ಪವಿತ್ರ ಬನ್ನೆ ಕಿ ಬಧಾಯಿ, ಈಶ್ವರೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ನೆ ಕಿ ಬಧಾಯಿ, ಈಶ್ವರೀಯ ಸುಖೋ ಸೆ ಭರ್ಪೂರ್ ಹೋನೆ ಕಿ ಬಧಾಯಿ, ಈಶ್ವರೀಯ ಪರಿವಾರ ಮೇ ಆನೆ ಕಿ ಬಧಾಯಿ ಔರ್ ಮಧುಬನ್ ಮೇ ಭೀ ಆನೆ ಕಿ ಬಧಾಯಿ, ಪಾಂಡವ ಭವನ್ ಮೇ ಭಟ್ಟಿ ಕಾ ಅವಸರ ಪಾನೆ ಕಿ ಬಧಾಯಿ, ಸೇವಾ ಕಾ ಮೇವಾ ಮಿಲ್ ರಹಾ ಹೈ, ಸೇವಾ ಕಾ ಮೌಕಾ ಮಿಲ್ ರಹಾ ಹೈ, ಇಸ್ಕಿ ಬಧಾಯಿ ಹೈ ನಾ. ಆನಂದಿತ ಹೋಕರ್ ಜೀನೆ ಕಿ ಬಧಾಯಿ, ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಮೇ ಝೂಮನೆ ಕಿ ಬಧಾಯಿ, ಯೇ ಈಶ್ವರೀಯ ಪಾಲನಾ ಪಾನೆ ಕಿ ಬಧಾಯಿ, ಸಂಗಮ ಯುಗ ಸತ್ಯುಗ ಸೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯುಗ ಹೈ. ಸಂಗಮ ಕೆ ಸುಖ ಕೆ ಆಗೆ ಸತ್ಯುಗ ಕಾ ಸುಖ ಭೀ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ತೋ ಇಸ್ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸಂಗಮ ಯುಗ ಕಿ ಬಧಾಯಿ. ಔರ್ ಆಜ್ ಕೆ ಮುರಳಿ ಕೆ ಅನುಸಾರ ಮೀಠೆ ಬಚ್ಚೆ ಯೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬನ್ನೆ ಕಾ ಸಂಗಮ ಯುಗ ಹೈ, ಇಸ್ಮೇ ಕೋಯಿ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ನಹೀ ಕರ್ನಾ ಹೈ, ಇಸ್ ಬಾತ್ ಕೋ ಸದಾ ಸ್ಮೃತಿ ಮೇ ರಖನೆ ವಾಲೋ ಕಾ. ಔರ್ ಸಂಗಮ ಪರ್ ತುಮ್ ಬಚ್ಚೆ ಬಹುತ್ ಬಡಾ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ತೆ ಹೋ. ಕೌನ್ ಸಾ ಬಡಾ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಹಮ್? ಬಾಪ್ ಕೆ ಹವಾಲೆ ಹೋ ಜಾನಾ ಅರ್ಥಾತ್ ಸ್ವಾಹಾ ಹೋ ಜಾನಾ ಸಬ್ಸೆ ಬಡಾ ಪುಣ್ಯ ಹೈ. ಇಸ್ ಪುಣ್ಯ ಕೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ನೆ ಕಿ ಔರ್ ತುಮ್ ಯಹಾ ಬಾಪ್ ಕೆ ಬನ್ತೆ ಹೋ ತೋ ಸಬ್ಸೆ ಮಮ್ಮತ್ ತು ಮಿಟಾ ದೇತೆ ಹೋ, ಘರ್ ಬಾರ್ ಬಾಲ ಬಚ್ಚೆ ಸಬ್ ಭೂಲ್ತೆ ಹೋ, ಕಿತ್ನಾ ಬಡಾ ವ್ರತ ಲೇತೆ ಹೋ, ಇಸ್ ವ್ರತ ಲೇನೆ ಕಿ ಭೀ ಬಧಾಯಿ ಹೈ. ಆಪ್ ಮುಯೆ ಮರ್ ಗಯಿ ದುನಿಯಾ, ಸಾರೆ ವಿಕಾರ ಮೇ ಜೊ ವಿಕಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಹೈ ವೋ ಸಬ್ ಭೂಲ್ ಜಾತೆ ಹೋ, ಕಿತ್ನಿ ಬಡೀ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೈ. ಕೋಯಿ ತನ್ ಸೆ ಸಮರ್ಪಿತ ಹೈ, ಕೋಯಿ ಮನ್ ಸೆ ಸಮರ್ಪಿತ ಹೈ, ಕೋಯಿ ಧನ್ ಸೆ ಸಮರ್ಪಿತ ಹೈ, ಕೋಯಿ ಜನ್ ಸೆ ಭೀ ಸಮರ್ಪಿತ ಹೈ, ಉನ್ಕೆ ಪರಿವಾರ ಕೆ ಲೋಗ ಭೀ ಸಮರ್ಪಿತ ಹೈ. ಸಮರ್ಪಣ ಘರೋ ಮೇ ರಹಕರ್ ಜೋ ಮನ್ ಬುದ್ಧಿ ಸೆ ಸಮರ್ಪಿತ ಹೈ ಉನ್ಕೆ ಜೈಸಾ ಕೋಯಿ ಸಮರ್ಪಣ ಹೈ ನೀ, ತೋ ಇಸ್ ಸಮರ್ಪಣ ಮೇ ಜೀವನ್ ಕಿ ಭೀ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಬಧಾಯಿ. ಫಿರ್ ಧಾರಣಾ ಸಾರ ಬಾಬಾ ಕಹತೆ ಹೈ ಕಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬನ್ನೆ ಕೆ ಲೀ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಪಾನೆ ಕೆ ಲೀ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮ ಕರ್ನಾ ಹೈ, ಪವಿತ್ರ ಜರೂರ್ ಬನ್ನಾ ಹೈ, ಘರ್ ಬಾರ್ ಮೇ ರಹತೆ ಹುಯೇ ಭೀ ಬುದ್ಧಿ ಸೆ ಸಬ್ಸೆ ಮಮತ್ ತು ಮಿಟಾನೆ ಮಿಟಾನಾ ಹೈ, ಔರ್ ಅಪ್ನೆ ತನ್ ಮನ್ ಧನ್ ಸೆ ಶ್ರೀಮತ್ ಪರ್ ಭಾರತ ಕೋ ದೈವೀ ಸ್ವರಾಜ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ ಬನಾ ರಹೇ ಹೈ, ಇಸ್ಕಿ ಭೀ ಬಧಾಯಿ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬನಾನೆ ಕಿ ಸೇವಾ ಕರ್ನೆ ಕಿ ಭೀ ಬಧಾಯಿ, ಇಸ್ಕಾ ಭೀ ಸ್ವಾಗತ್ ಹೈ ಆಪ್ ಸಬ್ಕೋ, ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಹೈ. ಫಿರ್ ಸೆ ಅಭಿನಂದನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರ್ನೆ ಔರ್ ವರದಾನ್ ಮೇ ಬಾಬಾ ಕಹತೆ ಹೈ ಕಿ ಸಹಯೋಗ ದ್ವಾರಾ ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಬನ್ನೆ ವಾಲೆ, ಸ್ವಯಂ ಕೋ ಸಹಜಯೋಗಿ ಬನಾನೆ ವಾಲೆ, ನಿರಂತರ ಯೋಗಿ ಬನ್ನೆ ವಾಲೋ ಕಾ ಭಟ್ಟಿ ಮೇ ಸಂಕಲ್ಪ ರಹ ನಾ, ಯಹಾ ತೋ ಚಾರ್ಟ್ ಸಬ್ಕಾ ಅಚ್ಛಾ ರಹ ಹೈ, ಸಬ್ಕಾ ಚಾರ್ಟ್ ಅಚ್ಛಾ ರಹ ಹೈ. ಕಿಸ್ಕಾ ಚಾರ್ಟ್ ಚಾರ್ ಘಂಟೆ ಸೆ ಅಧಿಕ ರಹ, ಕಿಸ್ಕಾ ಚಾರ್ಟ್ ಯಹಾ ಪರ್ चार घंटे से अधिक रहा हाथ उठाएं जरा। अच्छा, यहां तो चार घंटे से अधिक होना ही चाहिए, चार घंटे से कम नहीं। दिन भर में आप करते भी होंगे, लेकिन मन में ऐसा लगता है पता नहीं होता है कि नहीं, इसको भी जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन मधुबन में सहज स्मृति स्वरूप रहना, व्यर्थ से मुक्त रहना कि बाबा की धरणी पर पहुंचे हैं, प्रसन्न चित्त अनुभव कर रहे हैं, व्यर्थ से मुक्त हैं, ये भी बहुत बड़ा भाग्य। ये भी निरंतर याद है, याद है ना। ये ही याद रखना कि हम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग अनमोल युग है, ये ईश्वरीय परिवार के हमारे दैवी रत्न भाई बहने हैं। ये ही याद रखना भी योग है, स्मृति स्वरूप बनना ही योग है और विस्मृति स्वरूप होना वियोग है ना। तो ऐसे निरंतर योगी बनने वालों का और स्लोगन के अनुसार सहन करना संगम पर, अर्थात मर करके स्वर्ग का राज्य लेना, जो इस स्लोगन को अपने बुद्धि में रखते हैं और सदैव सहनशील बन करके निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। ज्वाला रूप की याद के लिए बाबा इशारा देते हैं कि बच्चे समय के अनुसार तुम्हारी याद की यात्रा ज्वाला रूप की होनी चाहिए। लगन में मगन है, लगन है सब में, लेकिन बाबा कहते हैं लगन में पास है तो क्या करना है, लगन को अग्नि का रूप देखना, अगन रूप देना है। और जब अगन रूप होगा तो दुनिया के जो दुख हैं, पाप हैं, अत्याचार हैं, ये सब उसमें दग्ध हो जाएंगे। आज 16 तारीख है ना, तो 16 दिन में आपने 16 पॉइंट सुना होगा, पढ़ा होगा, जिसमें बाबा ज्वाला रूप अर्थात शक्तिशाली याद में रहने की जो है वो बात कहते हैं, इशारा देते हैं। तो हम सब पूछे स्वयं से कि क्या हमारी याद साधारण है या असाधारण है, विशेष है? क्या ज्वाला रूप की याद है? क्या हम अनुभव करते हैं कि हमारी स्थिति, हमारी योग की अवस्था वो ऐसी प्रचंड ज्वाला रूप की है जिसमें सब कुछ दग्ध हो जाए? बाबा कहते हैं जो पुरानी दुनिया का दुख दर्द है, जो हिसाब किताब है, जो लेन, जो कार्मिक अकाउंट्स हैं, वो सब समाप्त होने चाहिए, क्योंकि यही समय है अपने कार्मिक अकाउंट्स को विवाह करने का, समाप्त करने का। अब न किया तो फिर वो साथ साथ चलता रहेगा और कई गुना बढ़ जाएगा। अगर किसी का कर्जा लिया है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। बहुत तो इसलिए कर्जा लेते रहते हैं, सोचते हैं विनाश होने वाला है, कौन किसको देता है, जो लेना है ले लो है? लेकिन ये लेने वाली रीत ठीक नहीं है। जो भी हमारे हिसाब किताब बन रहे हैं, चाहे वो संबंध संपर्क का है, चाहे वो वाणी द्वारा कुछ किसी के द्वारा हिसाब बना रहे हैं, चाहे वो संबंधों की स्मृति के द्वारा बना रहे हैं, या हिसाब किताब लेन देन का बना रहे हैं, कोई भी प्रकार से यदि हिसाब किताब है तो वो परीक्षा बनकर के सामने आने वाला है। और अंत में जिनको एक बाबा की याद रहे और कुछ भी याद ना आए, एक बाबा दूसरा ना कोई, और जो फर्स्ट डिवीजन में आने वाले हैं, जो फर्स्ट क्लास पास होने वाले हैं, उनका टारगेट तो एकदम सारे बंधन को समाप्त कर, सारे हिसाब किताब को समाप्त कर, सारे कर्ज को, मर्ज को और फर्ज को समाप्त करने का जो लक्ष्य रखते हैं, वही अंतिम पेपर में पास हो सकते हैं। तो अपने को चेकिंग करते जाएं। आइए आपको आज की मुरली से संबंधित कुछ विशेष बातें कर लें जो आपकी भट्ठी में भी बराबर काम आता रहे और भट्ठी का सार रूप भी आ जाए। पहली बात जो बाबा कहते हैं कि बच्चे सबसे बड़ा पुण्य है संगम युग पर स्वयं को बाप के हवाले कर देना, अर्थात स्वाहा हो जाना। बड़ा पुण्य कैसे है? पुण्य कैसे है? जब हम अपने आप को ही बाबा को दे देते हैं, तन से भी समर्पित हो जाते हैं, तो हमारा तन से कमाया हुआ जो धन है और हमारा जो मन है, हमारा जो संबंध है, हमारा जो संसार है, हमारी जो अपेक्षाएं हैं, हमारी दुनिया से जो इच्छाएं हैं, वो सब समर्पित हो जाते हैं। तन का समर्पण होना है तो आसान, लेकिन आसान भी नहीं। तन समर्पित हो जाए सही मायने में, जिसको बाबा कहते हैं संकल्प श्वास स्वप्न सब कुछ समर्पित हो जाए, है ना? बहनें हमारी जो समर्पित हैं, ये समर्पित होने में साधारण बात नहीं। 45,000 हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें तन से समर्पित होने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है उनको समर्पित कराने के लिए। कोई तो सहज हो जाते हैं और किसी को ज्ञान में लाने के लिए, समर्पित कराने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बहनों से पूछो, सेंटर पर सब भाई बहनें आते हैं, कन्याएं निकलती नहीं, वो तैयार ही नहीं होते हैं कि नौकरी छोड़ें, जॉब छोड़ें, दुनियादारी छोड़ें, समर्पित हो जाए। समर्पित होने के लिए तो बड़ा वो होना चाहिए, है ना? बड़ा दिल मजबूत होना चाहिए। शुरू में डर लगता है, लेकिन समर्पण का जो सुख, समर्पण वालों से पूछो कितना समर्पण का सुख मिलता है। गृहस्थी में, घरों में कितने बंधन है, अपना है, अपने परिवार का है, अपने युगल का है, उनका परिवार है, संबंधों का बंधन का इतना विशाल अनंत जंजाल है। जाल है और जंजाल है, जन का भी जाल है ना? जो कुमार हैं, जो कुमारी हैं, जो समर्पित हो गए हैं, जो मधुबन में समर्पित हैं, जो सेवा केंद्रों पर समर्पित हैं, जो बाबा को सच्चे दिल से समर्पित हो जाते हैं, पहली बात वो बाबा उनकी सुरक्षा की गारंटी कर लेते हैं। कहीं भी रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, किसी कोने में रहेंगे, संसार के कोने में रहेंगे, लेकिन जो बाबा को समर्पित हो गए तो समर्पण मैता में ही सुरक्षा है। जो समर्पित हो गया वो सुरक्षित हो गया। कितने उदाहरण है। हाँ, अभिनंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए समर्पण का। कितने उदाहरण बताऊं आपको। उड़ीसा में बाढ़ आया, सुनामी जैसे लहर आई, सब तो भाग गए, बहनें भागी नहीं, वो सेंटर पर ऊपर खड़ी हैं और पानी जो है चढ़ता जा रहा है, नजदीक ऊपर आ गया है पानी, लेकिन बहनें डर नहीं रही, बाबा 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 कर रहे हैं। तो बाबा तो रखवाली करेगा ना, संभालेगा। हेलीकॉप्टर आता है, देखता है ये दोनों बहनें खड़ी हैं, उनको सुरक्षित लेकर के पहुंचा देता है, और जो भागे उनको तो पानी की लहर आई, उनको लपेट कर लेकर के चली गई। तो जो भागने भागते हैं अपनी सुरक्षा के लिए वो तो नहीं बचते, लेकिन जो भगवान को अपना समर्पित जीवन कर देते हैं तो भगवान उनकी रक्षा कर देता है। ये बात पक्का नोट कीजिए, तन का समर्पण होना भी कम नहीं है, लेकिन तन का समर्पण होना सब कुछ नहीं। तन समर्पित है और मन हमारा दसों दिशा में घूम रहा है, उस समर्पण का कोई महत्व नहीं, उस समर्पण का महत्व नहीं। तो तन के समर्पण होने के साथ साथ धन समर्पण हो ही जाता है, और तन और धन समर्पित हो जाए ये तो आसान है, फिर भी मन और बुद्धि का समर्पण होना बहुत बड़ी समर्पण महत्ता है। जो अपने मन को भी बाबा के हवाले कर देता है, बाबा उनके सोचने का भी काम करता है। जो अपने मन को बाबा के हवाले कर देता है वो मनमना भव हो जाता है। जो अपने मन बुद्धि को बाप के हवाले कर देता है वो सदा संतुष्ट हो जाता है, सदा सुरक्षित हो जाता है और सदा सरल हो जाता है, सरलता आ जाती है। तो मन बुद्धि की समर्पण महत्ता सबसे बड़ी समर्पण महत्ता है। इस समर्पण के महत्व को अपने मन में रखना है। आप जो घरों में हैं वो भी सेवा केंद्रों पर रहने वालों से, समर्पित रहने वालों से भी आप आगे नंबर ले सकते हैं मन बुद्धि के समर्पण भाव से। ऐसा ना सोचें कि मैं तो समर्पित हो ही नहीं सकता, मैं तो परिवार में हूं, बाल बच्चे वाला हूं। लेकिन अगर मन भी समर्पित कर दिया, रहते हैं घर में और सब बाबा के हवाले करके रहते हैं, पूछते हैं भैया गाड़ी किसकी है, कहते भैया बाबा की गाड़ी है। घर किसका है, ये बाबा का घर है। ये दुकान किसकी है, ये बाबा की दुकान है। सब जहां भी जाते पूछते हैं तो बाबा 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 करते हैं। जब बाबा के कमरे में जाते हैं कहते हैं ये किसका है, कहते यही मेरा है, बाकी तो कुछ भी मेरा नहीं है, है ना। बाबा के कमरे में जाते हैं कहते हैं ये किसका है, कहते यही बाबा मेरा है, बाकी इस दुनिया में कुछ भी मेरा नहीं। तो जो घरों में रहकर मन बुद्धि से समर्पित होते हैं वो समर्पण वालों से भी आगे नंबर ले सकते हैं, ले सकते हैं। अभिनंदन कीजिए। अब बाबा ने बिल्कुल किसी के लिए भी कोई कह नहीं सकता है। इस संगम युग में हमारे पुरुषार्थ में कोई बहाना नहीं दे सकता है कि ऐसा होता तो मैं भी कर लेता। सबके लिए समान अवसर, एक साथ ही हम लोग उसी डेड लाइन पे हैं जहां से हमको आगे बढ़ना है। समर्पण हो करके पुरुषार्थ के लिए भी पूरी मार्जिन है। भले दादियां चली गई, भले 90 वर्ष हो गए यज्ञ में, लेकिन अभी भी आने वाला व्यक्ति ये नहीं कह सकता है अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं, जो लेना था 90 साल वालों ने ले लिया, हमारे लिए तो छाछ भी नहीं बची है, मक्खन सब खा लिए, हमारे लिए छाछ भी नहीं बची। सच तो पूछा जाए मेहनत उन्होंने किया, मक्खन तो उन्होंने निकाला और आप तो खाने के लिए आ गए, आप तो बने बनाए पर आए, आपको सोचने का भी कोई काम नहीं देते। आप देखिए व्हाट्सएप पे देखिए, सारे क्लासेस देखिए, इतना ढेर सारा ज्ञान का तो बाढ़ आ गई, ज्ञान की बाढ़ आ गई है ना, कुछ भी नहीं। और उस पर और तकाजा, AI का जमाना आया, जो कहीं भी ना मिले वो AI दे देता है, बना के देता है ना, सब कुछ इतना आसान कर दिया है। तो अब क्या करना है, अब कोई एक्सक्यूज नहीं, एक साथ मिलकर हम सबको अपनी तपस्या में मगन हो जाना है। तो तपस्या एक ये भी है कि घरों में रहें, मन को मनमनाभो कर दें, बुद्धि को बाबा के आगे सरेंडर कर दें। एक गीत याद आता है, जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले। है ना, तन का ना गर्भ कीजिए, ये तो विनाशी है। तू तो है चेतन आत्मा, ज्योति अविनाशी है, ज्योति सागर पिता को दिल में बसा ले, अरे राहों में भर जाएंगे तेरे उजाले, जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले सब कर दो। और सब प्रभु के हवाले कर दिया तो सब अपना हो जाता है, सब कुछ अपना हो जाता है। ऐसे एक दूसरा गीत है, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा, खुशियों के सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा, है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है, अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है, सब कुछ तेरा ये मान ले और सब कुछ तेरा हो जाएगा, सब कुछ तेरा ये मान ले सब कुछ तेरा हो जाएगा, चिंता सभी मिट जाएगी और मन विमल हो जाएगा। आकाश से ऊंची तुम्हारी भावनाएं हो, दिल हो बड़ा सबके लिए शुभकामनाएं हो, कल्याण करता चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा, और आजाद हो पिंजरे से पंछी फिर निकल उड़ जाएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को सब सरल हो जाएगा, खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। समर्पण का बड़ा महत्व है। तो इस भट्टी से आपको कुछ टिप्स देता हूं। ये जो भट्टी है, ये भट्टी आपकी अविनाशी हो जाए, यहां से जाने के बाद आप निरंतर भट्टी करते रहें, उसके लिए चार तरह की तपस्या रोज करनी है। चार तपस्या, चार भट्टी, चार बातों की। कौन सी? पहला है आत्म अभिमानी बनने की तपस्या, यही देही अभिमानी बनने की तपस्या, अशरीरी बनने की तपस्या, यही अंतःवाहक शरीर से सेवा करने की तपस्या, और यही विदेही बनने की तपस्या, यही फरिश्ता बनने की भी तपस्या है, ये आत्मअभिमानी बनने की तपस्या। दिन भर में एकदम इसी धुन में लग जा कि मैं आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मेरा कितना बड़ा रोल है, मैं विशेष आत्मा हूं। एक मुरली में था बाबा, उसमें कह रहे थे अब तक बहुत अभ्यास किया, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन अभी इस याद से काम नहीं चलेगा। कौन सी आत्मा हूं? मैं विशेष आत्मा हूं। रोज एक संकल्प ले लें, उसी से दिनचर्या आरंभ करें, और एक संकल्प में सारे ज्ञान का सार आ जाता है, और वो है कि मैं पवित्र आत्मा फरिश्ता अवतरित हुआ हूं, मैं अवतार हूं, मैं पवित्र आत्मा फरिश्ता अवतरित हुआ हूं। रोज इस संकल्प से आपको अवतार लेना है। अब तक क्या करते रहे? अब तक रोज नीचे से ऊपर जाते रहे, कहां तक पहुंचे, कितना पहुंचे, कब तक पहुंचे? बहुत मेहनत किया ना। अब आज से करना है कि नीचे से ऊपर नहीं जाना है, रोज ऊपर से नीचे आना है। ऊपर से नीचे आएंगे तो ऊपर जाना आसान रहेगा, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो कितना भी रहेंगे नीचे ही आएंगे। तो अभी साधारण व्यक्ति नहीं, मैं घर में हूं, अब मैं जाऊं परमधाम में जाऊं, आज बाबा से फिर बाबा को बुलाऊं, ये मेहनत नहीं। अब रोज आपको अवतार लेना है, रोज सवेरा हो और संकल्प हो कि रात को मैं जब बाबा के पास गई वतन में और बाबा की गोद में सो गई, तो बाबा ने सवेरे जगाया, गोद से उठाया, मेरा श्रृंगार किया, पुचकार किया, प्यार किया, और पुचकार प्यार करके बाबा ने मुझे नीचे भेज दिया कि बच्चे आज मेरी जगह पर तुम जाओ, आज मैं नहीं जा रहा हूं, मेरी जगह पर तुम जाओ। एक बहुत बड़ा संकल्प है। रोज मास्टर गॉड बनकर के उतार लीजिए। ऊपर से मास्क आपने मम्मी का पहना है, अंदर में देखो मैं तो फरिश्ता हूं। बच्चे सोच रहे हैं मम्मी है, मम्मी तो रही नहीं, मम्मी तो गई, अब तो मैं तो फरिश्ता हूं। सारा दिन आप मास्क के अंदर से देखो कि मैंने ऊपर मास्क पहना है, ये ड्रामा कर रहा हूं, ड्रामा कर रहा हूं, ऊपर से मम्मी दिखाई पड़ रहा हूं, लेकिन ओरिजिनल तो मैं तो फरिश्ता हूं। मैं आया हूं और मुझे वापस जाना है। ठीक है, ये करेंगे ना संकल्प। तो आत्म अभिमानी बनने की तपस्या रोज करनी है, प्रयोगशाला अंतर्मुखी बन करके अंदर में बैठकर आत्मचिंतन करें, आत्मचिंतन करें, आत्मा का चिंतन करें, आत्ममंथन करें। जो चिंतन करें उसको बार बार दोहराएं, मंथन करें, मथें। जब तक मंथन नहीं करेंगे तब तक वो निकलेगा नहीं। लेकिन आत्म चिंतन का मंथन करें, व्यर्थ चिंतन का मंथन करेंगे, पानी को मथेंगे तो क्या निकलेगा, है ना? तो मंथन करना है, आत्म मंथन। ऐसे ही आत्म दर्शन करना है, अपने आप को देखें, स्वयं को देखें कि मैं शरीर में, यहां पुरुषार्थी शरीर में हूं, मैं यहां चमक रहा हूं, और सामने देखें हमारा संपूर्ण शरीर, उसमें मैं चमक रहा हूं। इसमें से निकल करके जैसे ये शरीर वो शरीर एकाकार हो गया, जैसे ये शरीर निकल करके मैंने संपूर्ण शरीर में प्रवेश किया और संपूर्ण शरीर सहित पुरुषार्थी शरीर में प्रवेश किया। तो इस तरह से मिलने का निकलने का ये अभ्यास करें। ऐसे ही और आत्मदर्शन के साथ आत्म अन्वेषण करें, अपने अंदर खोज करें, कितनी मेरे अंदर शक्तियां हैं, कितनी ऊर्जा है, कितने अनंत गुण हैं, मेरे दिव्य संस्कार कितने अच्छे अच्छे हैं, कितनी पावन स्मृतियां हैं मेरे साथ। उन पावन और महान स्मृतियों को याद करें। पूरा संगम युग में जो मिला है, कितना बाबा से मिलना हुआ, कितनी अव्यक्त वाणियों का अध्ययन किया, कितनी डायरियां भर दी, कितने वरदान मिल गए, कितने ब्रह्मा भोजन खाए इतने सालों से, हैं? कितनी देवी आत्माओं का, दादियों की पालना मिली। सोचो तो सही, कभी सोचा है? इतना मिला है, इतना मिला है कि मिला ही मिला है। आप सबको मिला है ना? सबको मिला है या सोचते हैं अभी भी तो हम आए हैं, हमने तो कुछ देखा ही नहीं, हम भी कुछ देख लें? ऐसा नहीं, अब देखने का टाइम नहीं है, अब आ गए हैं। एक दिन का भी कोई व्यक्ति है ज्ञान में आ गया है तो ये ना सोचे कि अभी हमको तो बहुत कुछ करना है, 90 साल मुझे भी जीना है, अब समय नहीं। क्वारंटाइन में है आप, क्वारंटाइन बल बिल्कुल, अब एकदम अंदर में बैठ के तीव्र पुरुषार्थ करके लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जाना है। ये अभी के भाई बहने जो आ रहे हैं उनको सबके अनुभवों का निचोड़ मिला है। मैं भी मधुबन में आया 45 साल पहले, जब आया तो बड़ी उत्कट उत्कंठा थी, बड़ी गजब की लगन थी, बहुत मलाल भी था कि दादियां 40 साल पहले आ गईं और मैं 40 साल के बाद में आया। क्यों भैया, क्यों बाद में आए? जरूर गड़बड़ किया होगा, अच्छे कर्म नहीं किए तो 40 साल के बाद आए, नहीं तो तुम भी सिंध हैदराबाद कराची में आ गए होते। यही मन में बड़ा पछतावा था। पुरुषार्थ करते थे, सेवा में भी बिजी रहते थे, रातों को भी जाग करके छतों पर घूम घूम करके बाबा को रो रो करके भी कह रहा हूं कि बाबा दादियों को तो आपने पसंद कर लिया, मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं, कोई नहीं थी खूबी काबिल न थे कुन तुम्हारे, सोचा नहीं कभी था बदलेंगे दिन हमारे, जाने क्या देखा मुझमें, मुझे प्यार कर लिया आंचल में भर के, मेरे लाल लाडले का आंचल में भर लिया। ऐसे कहते तो रोता था, खूब रोता था। तब तो ये गीत वगैरह का भी इतना पार्ट नहीं था। सोचते थे मैं क्या करूं बाबा, आप तो उनको दादियों को ही देखते हैं, रात दिन उनके ही गुण गाते हैं, हमारी ओर नजर कब हुई है, कब हमारी ओर देखोगे, और मेरे पास कुछ देखने लायक हो तब तो बाबा देखोगे, ऐसे बाबा से कहते थे, बात करते थे। ये तो संजोग अच्छा था कि हम किचन में आए, अच्छी अच्छी संगत मिल गई, अच्छी रंगत मिली। उसी समय पुरुषार्थ की जो धुन लग गई, 5-6 डायरियां बनाई, चार्ट लिखने का, आर्टिकल लिखने का, गीत कविताएं लिखने का, बाबा ने क्या कहा वो लिखने का, इतनी डायरियां बनाई कि इतना डायरियों का अंबार है कि हमारा अंतिम जो संस्कार हो उसके लिए लकड़ी की जरूरत भी नहीं, वो किताब कापियां इतना ढेर सारा है। लेकिन वो दिन थे, मेरे मन में बड़ी ललक थी। किचन में भोजन बनाते थे, मैंने कहा दादी भोली दादी को कि दादी मुझे भट्टी करनी है तो एक दिन की छुट्टी चाहिए। अच्छा कहाँ जाओगी? दादी ओम शांति भवन में, ओम शांति भवन नया नया बना था। फिर कहा ठीक है, मैं गया वहां पर, दिन भर भट्टी किया, यही मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, सारा दिन लगा रहा, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो मेरा मन कहा कि कुछ करना तो है। दूसरे दिन फिर छुट्टी ले ली, फिर दूसरे दिन किया, दूसरे दिन शाम तक बड़ा आनंद आने लगा, बड़ा तो नहीं आया लेकिन अच्छा लगने लगा, लेकिन लगा कि अभी भी बाकी है। फिर तीसरे दिन छुट्टी ले लिया, तीसरे दिन शाम तक तो क्या लहर चली कि मुझे ये याद ही नहीं कि मैं कब सवेरे उठा, 2:30 बजे, और सवेरे 4 बजे अमृत बेले, 2:30 बजे का समय, और ओम शांति भवन में बाबा के कमरे के पास वहां जा रहा था। तो मुझे याद आया कि मैं कहीं अव्यक्त होके तो नहीं आया हूं, शरीर छोड़कर दूसरे सूक्ष्म शरीर में तो नहीं आया हूं, क्योंकि मुझे होश नहीं कुछ, कब उठा कब तैयार होके आ गया। तो देखता हूं ऐसे, अरे ये तो शरीर है, अभी स्थूल शरीर बाकी है, मतलब इसमें हूं। तब ध्यान में आता है, फिर क्या करें। फिर तीसरे दिन शाम तक जो हुआ, एक हफ्ते तक गजब नशा रहा, आत्मा 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 देखना, कुछ और दिखाई ही नहीं पड़े, किसी से बात करने का मन ही नहीं, बड़ा अंतर्मुखी हो गया था एक हफ्ता। और वो लहर ऐसी रही कि आज तक भुलाया नहीं भूलता है। लेकिन इतना लगता है कि अगर ठान लिया जाए एक एक सब्जेक्ट पर, और उसका रिजल्ट क्या रहा, उसी का रिजल्ट रहा तमाम गीत, भ्रिकुटी के कुटिया में बैठे ही बैठे, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, अय आत्मन अंतर की निगरानी तू कर अपनी, राजन तन्नी तू राजधानी देख ले अपनी, मैं जगमगाती मैं झिलमिलाती सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मड़ी। तमाम गीत इतने निकले कि जो आत्मा की धुन की, बाबा की याद के तो निकलते गए, मुरलियों में बाबा कह रहे हैं, स्लोगन है, बस मन में यही धुन बजता रहे, मैं बाबा का बाबा मेरा, अरे मैं तो सुना डांस करने लगा, वाह बाबा तो गाना गा रहा है, तुरंत ही 3 मिनट में वो गाना लिखा, वो ओम शांति भवन बैठे बैठे, अद्भुत। कहने का तारतम्य है कि लगन लगाइए, व्यस्त रहते हैं, एक दिन छुट्टी लेकर और एक दिन व्रत ले लेंगे तो और अच्छा रहेगा। आज भी बाबा कह रहे हैं व्रत लेना, माना हवाले कर देना अपने आप को। तो एक दिन भी व्रत ले लिया और आप में एकांत बैठ करके दिन भर में मैं आत्मा हूं, अपने आप को देखने का, शरीर से अलग होने का, शरीर से बाहर आने का, शरीर में यहां खड़ा है शरीर, और शरीर में मैं आत्मा उतर रही हूं, नीचे पांव तक जा रहे हैं, अंगूठे तक आए ऊपर देखे शरीर खड़ा है, मैं आत्मा नीचे आ गई, फिर नीचे से आत्मा ऊपर उठ रही, फिर ऊपर उठ करके जाके मस्तक पे बैठ गई, फिर आकर के फिर पांव में जा रहा हूं, दूसरे पांव में अंगूठे तक गया। तो तो ये जाने का और अनुभव करने का ये अभ्यास करें। चल रहे हैं, धीरे धीरे चलें, पांव रोकें, सडनली रुक जाए, पांव नीचे आओ, फिर पांव को नीचे रखो, फिर हाथ ऊपर उठो, हाथ ऊपर उठो और उठो और उठो, आंखें उठो, आंखें उठो, सामने देखो, देखो बाबा को, देखो, देखते रहो, जब तक मैं कहूं नहीं देखते रहो, ऐसे करके एक एक स्थूल ऑर्गन्स को कमांड करके उसको चलाइए, जैसे बाबा बाप दादा दादी के तन में आए। वो दिन है डायमंड हॉल में, दो भाई बहुत जोर से दौड़ के आए, बाबा तक पास पहुंच गए, बाबा ऐसे बैठे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और सब उसको पकड़े, भाई को लेकर के अलग किया। अब्दुल कलाम जी भी आए थे, बाबा ऐसे देखे, फिर बाबा पूछता है, हलचल में तो नहीं आए, हलचल में तो नहीं आए, और खुद अचल बैठा हुआ है एकदम। बाबा ये है कि आंखों के ऊपर कमांड है। बाबा पूछता है, ग्रुप कहां का है? वो मैंने, बाबा कहते हैं, अच्छा अब क्या करना है? तो उधर से आवाज आती है, बाबा ये मंडी वाले वासद वाले आए हैं। तो बाबा क्या करता है, सुना, उठो उठो, इतनी देर लगाया बाबा ने, वासद वाले उठो, मंडी वाले उठो। फिर बाबा उठा रहे हैं, जब देख रहे हैं बाबा उठ रहे हैं, तो बाबा ये भी नहीं देख रहा है कि वो मुन्नी बहन कहां है, क्या बोल रही, बाबा ऐसे दृष्टि दे रहा है। कितना कमांड है, पुरुष परम पुरुष कैसे इस प्रकृति को अधीन किया है। मेरे बिना हुक्म के मेरी आंखें भी नहीं उठ सकती, एक एक शब्द तौल तौल के बोल रहा है, सोच के बोल रहा है, नहीं ये मत सोचो बाबा सोचने में इतना टाइम लगाता है कि क्या बोलना है, नहीं, एक एक शब्द को अधीन। हम जल्दी जल्दी बोलते हैं, ये भी हमारी प्योर इम्प्योरिटी है। प्योरिटी है कि हर चीज को हम पूरा उसकी अथॉरिटी बनकर उसको चला रहे हैं। हमारी इंद्रियां भी हमारे अधीन है, हमारी वाणी भी अधीन है, मुख नाक कान ये सब अधीन है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, सारी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय सब पर मेरा नियंत्रण है। स्वराज अधिकारी बने, आप ऐसे बैठें, सिर पर हाथ रखें, दाहिना हाथ, अनुभव करें कि मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं, कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं, करें मंत्रणा अपने मन मंत्री से, समाचार पूछें सजग संतरी से, बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं, बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी, सुसंस्कारों की सेना सजग है जो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए, खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया ये वरदानी हाथ, खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया जो खोया था स्वराज फिर से दिलाया, फिर से दिलाया, उपकार उसने किए हम पे इतने कि आभार धरती गगन मिल के गाए, मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाए, कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भ्रिकुट बीच दरबार अपना सजाए, मेरा राज्य कितना अच्छा है, मैंने अटेंशन का पहरा लगा कर रखा है, माया के गुप्तचर भी मेरी इस राज्य में किसी भी रूप में कदापि प्रवेश नहीं कर सकते। मैंने अपनी तीनों सेनाओं को सजग किया है, हमेशा तैयार हैं। मेरी प्रजा में कहीं असंतोष नहीं है। मैं प्रजा प्रिय लोकप्रिय राजा हूं। मेरा कितना सुंदर राज दरबार है। मुझ पर परमात्मा की मैत्री कृपा है। उसने मित्रता कैसी की है। मैं तो माया का मुरीद हो गया था, गुलाम था। मुझे अपना बना के मेरा राज वापस करके परमात्मा मैत्री कृपा बरसाई है कि बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे साथी, जब भी याद करोगे मैं तुम्हारे साथ उपस्थित रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा ही हूं। हुक्म करो, आदेश करो। नहीं बाबा, आदेश नहीं, आपका साथ बहुत कुछ है। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। नीचे करें। ये बाबा से बात होती रहे, लगन में मगन रहे, कितना अच्छा है। तो आत्मभिमानी बनने की तपस्या, शरीर से अलग होने का, जैसे तुम तो आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। तुम बिन तो जैसे तरकश में तीर नहीं हो। तुम हो जो इस शरीर में तो रोशनी कायम। तुम हो जो इस बदन में तो जिंदगी कायम। तुम बिन तो जैसे कलश में नीर नहीं हो। अरे तुम तो आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। ये तन तुम्हारा रथ है, तुम आत्मा रथी। निश्चित विजय तुम्हारी है प्रभु जो सारथी। निर्भय बनो कि पानी पर लकीर नहीं हो। तुम तो आत्मा हो, तुम शरीर नहीं। तन देखें, ये तन सीप है, मैं इसमें मोती हूं। ये तन दीप है, मैं आत्मा ज्योति हूं। ये वस्त्र है, मैं वस्त्रधारी हूं। ये शस्त्र है, मैं शस्त्रधारी हूं। ये सोने की डिबिया है, मैं हीरा चमक रहा हूं, मैं हीरा चमक रहा हूं। ये मेरी रचना है, मैं इसका रचता हूं। ये रथ है, मैं आत्मा रथी हूं। भगवान सारथी है, ये युद्ध का मैदान है। भगवान हमको धीरज देते हैं, बच्चे धीरज रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी निश्चित विजय है। जैसा मैं कहूं तुम करते रहो। ऐसे उपमा देकर के शरीर से अलग होने का, बहुत अच्छा है। कभी कभी देह अभिमान आए तो देखें कि मेरा शरीर खड़ा है और शरीर के चारों ओर एक पाइप से उसको छोटा करो। पाइप को छोटा करते करते पूरे शरीर को छोटा कर दीजिए, इतना छोटा कर दीजिए कि जैसे मैं पूरा शरीर सहित छोटे से उस पाइप के साथ मैं बिल्कुल छोटा हो गया हूं, बिल्कुल जैसे बिंदु बन गया। फिर बढ़ाई, फिर बढ़ाइए, फिर बड़ा होते फिर बड़ा हो गया, फिर छोटा कीजिए, फिर बिंदु में समा जाइए, बिंदु बन जाइए, फिर बड़ा कीजिए, विराट, बिंदु से विराट। ये अभ्यास आपको बहुत मदद करेगा। तो पहली तपस्या ये है। दूसरी है निरंतर याद की, जो बाबा कहते हैं सहयोगी अर्थात स्वयं को सहज योगी बनाने वाले, निरंतर योगी बन जाओ, निरंतर योग में मगन हो जाए। निरंतर योग कैसे होगा? निरंतर योग जो स्नेह में समाया रहेगा वही योग कर सकता है। बाबा से प्यार हमारा बढ़ता रहे, जितना जितना मुरली को हम प्यार करेंगे, मुरलीधर मुझे प्यार करेगा। अगर निरंतर योग में रहना है, निरंतर याद करना है, तो बाबा की मुरली को ही अपना ओढ़ना बना लीजिए, बिछौना बना लीजिए, खाना बना लीजिए, पानी बना लीजिए, वही औषधि है, सब कुछ बाबा की मुरली है। दिन भर में जितनी बार हो सके, 8-10 बार, लेकिन गिनती न करो, जितनी बार हो, सामने मुरली, बगल में मुरली, मुरली पर नजर है। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं, किताब अव्यक्त वाणी लेकर घूम रहे हैं लेकिन एक भी पॉइंट अंदर नहीं है। यहां पर हमेशा किताब है। बहुत लोग लिख रहे हैं, निरंतर पूरी डायरी भर दिया लेकिन एक भी पॉइंट अंदर में नहीं आया, वो डायरी के डायरी में रह रही, ये भी ठीक नहीं। लेकिन मुरली को अपना सर्वस्व मान करके, जब तक आप मुरली का चिंतन करके औरों को सुनाएंगे नहीं, मुरली के पॉइंट्स की लेन देन नहीं करेंगे, तब तक मुरली आपको याद नहीं रहेगी, और कुछ याद करने की कोशिश करेंगे तो फिर भूल जाएगा। याद करने के यही है कि दो लोग मिले, मैं क्या करता हूं, क्लास में ऐसे बैठे हैं, मुरली पूरी हुई, मैं कहता हूं दो दो पेयर बना लो और तीन पॉइंट आप सुनाओ, तीन पॉइंट वो सुनाए, ऐसे आपस में तीन मिनट में पूरी मुरली को सुन लेते हैं और सबको याद आ जाता है। ऐसे क्लास में कराना चाहिए, बहनें हमारी करा सकती हैं। मुरली पूरी हुए, अब मुरली सबने सुन लिया, अब दो दो मुंह करके ऐसे सामने सामने और तीन तीन पॉइंट सुनाओ, तीन 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 भी मिल सकते हैं, वो भी पॉइंट सुनाए, लेकिन जब मुख से सुनाएंगे तो याद रहेगा। अगर याद अंदर में याद किया है तो जल्दी भूल जाएगा, ठीक है, ये अच्छा है ना, ऐसे करें। तो दूसरा है निरंतर याद करें। निरंतर याद के लिए भोजन पे बैठें, तब याद में मौन में करें। क्या आप सब जितने बैठे हैं यहां पर, क्या संकल्प ले सकते हैं इस भट्टी से, एक स्थूल बात वो याद दिलाएगा, पॉइंट्स और भूल जाएंगी, लेकिन संकल्प कीजिए कि अब भोजन पर हम शांत रहेंगे, मौन में भोजन करेंगे। पहला तो मौन में भोजन करना, फिर है याद में भोजन करेंगे, ठीक है, क्योंकि मौन रहेंगे तो ही याद रह सकता है, बोलते बोलते याद करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, तो ये कर लें। याद पर तो करेंगे आप सब, याद में भोजन करेंगे, मौन में करना चाहेंगे, ये बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी इस तपस्या भट्टी की सफलता भी अगर आपने एक भी संकल्प ले लिया। तीसरी बात, निरंतर याद करने के लिए ऐसा हाथ करें, ऐसे फील करें कि बाबा मेरे सिर पर है, बाबा से किरणें आ रही मुझ आत्मा पर, बाबा किरणें मैं आत्मा, बाबा किरणें मैं आत्मा, जैसे बाबा की छाया में मैं चल रहा हूं, सोते बैठते उठते जैसे चलते फिरते, बस यही अनुभव करें कि बाबा मेरे सिर पर है, बाबा की किरणें आ रही हैं, मैं बाबा किरणें आत्मा। ये अभ्यास आपको, एक अभ्यास करेंगे यही अंत में आपको संपूर्णता के द्वार पर ले जाएगा। तीसरा, पांचों स्वरूपों का अभ्यास कर लें, बहुत अच्छा अभ्यास है, तमाम अभ्यास कराया होगा, यहां पर कर लें, मेरे साथ कर लें, कर लीजिए। मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, फरिश्ता पधारा। बहुत अच्छा, बधाई है। ऐसे ही तीसरी तपस्या है संस्कार परिवर्तन की। संस्कार जो बदल नहीं रहे हैं उनके पीछे पड़ जाएं। क्रोध का संस्कार है तो देखें कि क्रोध कहां आ रहा है, जितनी शांति की शक्ति जमा करते जाएंगे उतना ही क्रोध से मुक्त होते जाएं। क्रोध कुछ नहीं, मूर्छा है, बेहोशी है। अगर सजगता है, मैं आत्मा हूं, विश्व नाटक में मेरा अनमोल पार्ट है, मैं विशेष आत्मा हूं, मैं अवतार हूं, रोज अवतरित हुए अमृत वेले योग में देने का प्रयास करें, सबको देना ही देना है, सबकी पालना करना है, इस तरह से आपकी तपस्या बड़ी सफल हो जाएगी। और चौथी तपस्या है संपूर्ण पावन बनने की, व्यर्थ से मुक्त करते चलें सबको, अपने को आपको, ये चारों तपस्या करते जाएं, आपको इस भट्टी को यादगार बनाने की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। ओम शांति।
प्रभु का ध्यान।